साक्षी होकर के जगत को प्रकाश देने वाला होकर के दोनों कैसे झूठ बोल सकते थे। इसलिए बेचारी आंखें भ्रम में पड़ गई, घूमने लगी। तो माँ पूछती है, कस्मान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। अरे मंदात्मन, मंदांतात्मन, अरे मंदात्मा और दांतात्मन, अरे अपने मन पर मन को बस में नहीं रखने वाला, अरे स्वतंत्र और जितेंद्रिय, तुमने क्यों मिट्टी खाया? क्या तुमको खाने को नहीं मिलता है? क्यों खाया? माँ ऐसे कृष्ण को डांट रहे थे नीचे की तरफ मुंह कर, क्यों खाया? कस्माद मृदम भक्षितवान, क्यों खाया? तो कृष्ण तो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी, लेकिन उनकी आंखें नाच रही हैं, लेकिन मानो ये भाव व्यक्त कर रहे हैं कि कहाँ खाया। तो कहते रहा, एकांत में खाया है, सब बच्चों से छिप करके और तुम एकांत में मिट्टी खा रहा था, खाया ना, क्यों खाया? अदांतात्मन, अपने मन पर बस, अपने मन को अपने नियंत्रण में नहीं रखने वाला, मतलब स्वतंत्र, क्यों खाया? कृष्ण के बिना बोले माँ ये कहती है, तुम ये नहीं कह सकते हो कि नहीं खाया हो, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बदंती ताव का ये ते, एते ताव का, ये तुम्हारे आदमी, ये तुम्हारे लोग, तुम्हारे सखा बता रहे हैं। एते का अर्थ है जो यहाँ खड़े हैं अभी, ये सब बच्चे बता रहे हैं कि तुम खाए हो, क्यों खाए? हाथ पकड़ लिए खो। और कृष्ण को पूर्णतः भय हो गया है कि अब तमाचा चलाएगी, पीटेगी। बदंती ताव का हित, ये हमारे नहीं है कि हमारे पक्ष से बोलेंगे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे सखा हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, ये बोल रहे हैं। ये ते कुमारा तावका बदंती और ते अग्रज अपि अयम बदती, और ये कहो कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं तो अयम ते अग्रज, ये तुम्हारा अग्रज भी बोल रहा है, ये बलराम भी बोल रहा है, इसलिए तुम ये नहीं कह सकते कि नहीं खाया, क्यों खाया? तो अग्रज क्यों कह रहे हैं? अग्रज का मतलब यह है कि यहाँ जो बलराम जी ब्रज में रह रहे हैं, तो वास्तव में वे नंद बाबा को ही अपना पिता मानते हैं, और आगे जन्म हुआ ही है, कृष्ण से कुछ आगे जन्म लिए ही हैं, तो इस कारण से बहुत स्नेह है, वो अग्रज के रूप में ही माँ स्वीकार करती थी उनको, मानती थी कृष्ण दो भाई है, तो आगे जन्म लिया है एक या अनुज। तो मान लो ये बच्चे झूठ बोल सकते हैं, दूसरे के घर के हैं, लेकिन तुम्हारा अग्रज भी कह रहा है कि तुम मिट्टी खाए, क्यों खाया, क्यों खाया? तो श्री कृष्ण अब बोलते हैं, जल्दी जल्दी में वे अपने मुख के मिट्टी को निगल करके और अब विश्वस्त हो गए हैं कि हमारे मुख में मिट्टी का कोई अंश रह नहीं गया है। इसके पहले नहीं बोले, उनको भावना थी कि अभी मिट्टी के कुछ अंश रह गए हैं, तो अब समझ गए कि पूरा मुख साफ हो गया है, तो कहते हैं, नाम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंस। अम्ब माँ अब ये स्नेह उत्पन्न कर रहे हैं कि स्नेह उत्पन्न कर दूंगा, स्नेह वर्धन हो जाएगा तो मुझे नहीं पीटेगी, बल्कि संबंध दिखा रहे हैं, चाहे हमारा कोई साथी हो और चाहे कोई अग्रज हो, लेकिन वास्तव में हमारा संबंध तो तुम्हारे साथ। अम्ब संबोधित कर, अम्ब अहम न भक्षितवान, मैं नहीं खाया हूं, क्या कर्म, कुछ नहीं कह रहे क्या नहीं खाया, ना हम भक्षितवान, मैं नहीं खाया हूं, तो ऐसे बोल रहे हैं, नाम भक्षितवान, मैं नहीं खाया। सर्वे मिथ्या विशंसिना, फिर माँ कहने लगे, अरे बलराम भी कह रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं, तो कहते हैं, बलराम भाई है तो क्या इन लोगों से तुम भिन्न मत समझो, ये सब वही है। सर्वे में बलराम जी को भी शामिल कर रहे हैं। बलराम नाम भर के लिए हमारा बड़ा भाई है, लेकिन सर्वदा हमारे विरोध में ही रहता है। इनके कहने का आशय ये था, बलराम जी कभी कभी बहुत चिढ़ाते थे कृष्ण को, सब लोग गोरे हैं, नंद जी गोरे हैं, माँ जसोदा गोरी है, तुम काला, ऐसे तुम जन्म नहीं लिए हो, तुमको कहीं से खरीद करके लाए हैं। तो कृष्ण तो कहते थे, कहा करो यही रिसके मारे खेलन हो नहीं जा, मैं इस क्रोध के मारे तो मैं खेलने नहीं जाता, जब जाता हूं तो हमको काला कहता है। तो यहां पर कह रहे सर्वे सर्वे, और सब बच्चों को तो कह रहे हैं सर्वे में बलराम जी को भी शामिल करके कह रहे हैं। कोई ऐसी बात मत सोचना कि बलराम भाई है अग्रज है इसीलिए कुछ हमारे प्रति विशेष स्नेह रखता है, ऐसी बात नहीं है। सर्वे मिथ्या अभिशंसिन, ये जो भी आयोग लगाए हैं अभिशंसा किए हैं ये सब मिथ्या। अथवा सरस्वती जी बोल रहे हैं भगवान की जी पर, सर्वे अमिथ्याभिशंसिन, ये सब सत्य बोल रहे हैं। सर्वे के बाद अ लगा सकते हैं, सर्वे अमिथ्या विशंस माँ, सब सब सत्य बोल रहे हैं, और मैं ही नहीं खाया हूं, सर्वे सभी खाए हैं। एक ही अभी अर्थ, और अभी पता चला देंगे, अभी बता देंगे कि सब खाए हैं कि नहीं, सब तो उनके मुख में ही दिखाई पड़ेंगे, आगे वो दिखाएंगे। तो इसका एक अर्थ है कि माँ मैंने ही नहीं खाया है, सब खाए हैं। लेकिन मूल अर्थ इसका यह है कि अम्ब अहम न भक्षितवान, और यदि सत्य गिरह, यदि मेरे सत्य बोलने पर भी तुम इनकी बातों को सत्य मान रही हो, यदि सत्य गिरह, अगर इनके वचन को तुम सत्य समझ रही हो, तो समक्षम पश्यमे मुखम, तो मेरे मुख को सामने देख लो। जब मान लो मेरी बात पर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, यही बहुत सत्यवादी लोग हो गए हैं, बहुत सच बोल रहे हैं, मैं ही झूठ बोलने वाला, तो तुमको अगर इनकी बात पर ही विश्वास है, इनकी बात को सत्य मानती हो, तो मेरे मुख को सामने देख लो। तो सामने मुख करके खोल नहीं रहे थे, अभी भयभीत अवस्था में भगवान बोल रहे हैं, मेरे मुख को देख लो, समक्षम पर से सामने देख लो। तो माँ जसोदा को कुछ कुछ शंका हो गई, लगता है कि यही सत्य बोल रहा है, वो सब झूठ बोल रहे थे, क्योंकि इतनी बारीकी से भगवान बोलते हैं कि माँ को विश्वास हो जाता है। तब फिर भी वो एक बार तो छानबीन कर ही रही है, यद्येवं तर्हि व्यादेहि, यदि ऐसी बात है तुम नहीं खाए हो तो व्यादेहि, बाओ मुख खोलो, मुखम प्रसारय, मुख खोलो, समक्षम पश्य में मुखम को कहकर श्री कृष्ण ऐसे मुख करके और मुंह खोले नहीं थे। तब माँ जसोदा कहते ठीक है, यदि तुम नहीं खाए हो तो मुख प्रसारित करो, खोलो। भगवान ने देखा कब तो मुख खोलना पड़ेगा, तो भगवान ने दिखाना चाहते थे कि मुझे तो जो तुम डांट रही हो तो जानती नहीं हो हम कौन। वास्तव में भगवान की जो शक्तियां हैं वे माँ जसोदा पर रंज हो रही थी कि भगवान को और इतना डांट डपट कर रही है, तो हम बता देते हैं कौन है। तो भगवान ने अपना मुख खोला, जब उसने कहा कि मुख खोलो तो भगवान ने ऐसे मुख खोला, तब तक जसोदा मुख में देखी सारा जगत, सारा विश्व, और एक साथ, ऐसा नहीं कि टीवी के रील जैसा वो आ जा रहा है मिट रहा है, सारा जगत एक साथ देखा मुख ने, और देख करके वो तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, थर थर कांपने लगी, मैं क्या देख रही हूँ बच्चे के मुख में, ये क्या देख रही हूँ, सातत्र ददृशे विश्व, ये सारा विश्व देखने लगी, जगत स्थानु, चलने वाले जीव, अचल जीव, आकाश, दिशाएं, पर्वत, द्वीप, समुद्र, संपूर्ण भूमंडल, वायु, अग्नि, चंद्रमा, तारा, ज्योतिष चक्र, जल, तेज, नभस्वाद, आकाश यानी वायु, वियत और वैकारिक तेजस इंद्रियाणि मन मात्रा गुणास्त्रय तीनों गुण एतद विचित्रम सहजीव काल। यहाँ सह का अर्थ है कि सारा जगत एक साथ देखा, संपूर्ण जीव और काल स्वभाव कर्म आशय आदि के कारण जो भिन्न भिन्न जीवों की स्थिति है इस जगत में, जो जीव हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण क्या है, काल स्वभाव कर्म आशय, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखे। सुनो स्तनो वृक्ष विदारिता से ब्रजम सहात्मा नमवाप संघ। तो अपने बच्चे के मुख में सब कुछ देख करके और तो बहुत शंका में पड़ गई, जा रही थी मारने पीटने जा रही थी, छानबीन कर रही थी कि मिट्टी खाया है तो मिट्टी उगलवा दो, थोड़ा सा मिट्टी उगलवाने जा रही थी तब तक पूरा भूमंडल ही मुख में देख ली। अब तो हाथ छूट गया बच्चे का और उसने लगी ये क्या मैं देख रही हूँ, हाय रे भगवान ये क्या देख रही, किन स्वप्न ये, तो चार चीज माँ जसोदा सोच रही है, किन स्वप्न, क्या मैं सपना देख रही हूँ। तो फिर विचार करके देखने लगी और जगह पर, गाय गोपी घर द्वार, तो फिर कहते ना सपना नहीं, क्या ये सपना देख रही है। और फिर कृष्ण पर भी बड़े ध्यान से देखती है वही बच्चा वो सब, तो जागृत और स्वप्न में अंतर वो मिला ली, लेकिन पहले सोची क्या मैं सपना देख रही हूँ। उत्देव माया अथवा किसी देवता की माया तो नहीं है, क्यों वह मदियो बतबुद्धि मोह, कि मेरे बुद्धि का भ्रम है, कि मेरे बुद्धि में ही कोई भ्रम हो गया है, दूसरी बात में देख रही हूँ क्या हो गया। अथवा चौथा वितर्क करती है, अथो अमुष्य व ममार भकस्य, कहीं मेरे ही बच्चे का ये जन्म से ही कोई प्रभाव तो नहीं है। यही बात आकर के हृदय पर स्थाई जम गए, अमुष्य व ममार भकस्य, मेरे बच्चे इस मेरे बच्चे का ही कश्चन औत्पत्तिक आत्मजोग, जन्म से ही मैं कुछ विलक्षणता देख रहे हैं। उस दिन जब जम्हाई ले रहा था तो इसके मुख में सारा विश्व दिखाई दिया, आज पुनः सारा विश्व दिखाई दे रहा है, कहीं इस बच्चे की ही तो विशेषता नहीं है, कहीं यही तो भगवान नहीं है। देखिए ऐश्वर्य आकर के हृदय को दबाना चाहता है, उदित हुआ ऐश्वर्य, भगवान को कोई डांटे मारे तो भगवान की शक्तियां किस दिन काम आएंगी। सभी शक्तियों ने विरोध किया, क्या तुम समझती हो कोई साधारण बच्चा है, तो वे शक्तियां उदित कर रही हैं ऐश्वर्य को, देखी तो अब काहे को डांटने जाए और पश्चाताप करने लगी मां जसोदा। इस सारे जगत को जो मैं इस बच्चे के मुख में देख रही हूं, लगता है यही ईश्वर है, यही भगवान है, इसके भीतर सारा जगत है। उसने वेद शास्त्र सुना था जसोदा ने कि भगवान के भीतर सारा जगत रहता है, लगता है इसी का है। अथवा उसने ये सोचा कि ये सब कुछ सारा जगत भगवान की माया द्वारा रचा गया है, विष्णु की माया द्वारा, और भगवान कृपा करके हमको पुत्र दिए हैं, और पुत्र में जो इतना बड़ा प्रभाव दिख रहा है सब भगवान की माया शक्ति है, लगता है वही इसके भीतर से प्रकट हो रहे हैं, अतः उनके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी शरण में हूँ, वही मेरी गति है। अब पुत्र को डांटना डपटना छोड़कर भगवान की को प्रणाम करने लगे, मनाने लगे, हे भगवान हमको क्षमा कीजिए, आज तक जो मैं मानती थी कि मेरा पुत्र है, मैं ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की स्वामिनी हूँ, नंद बाबा मेरे पति हैं, नंद महाराज मेरे पति हैं, और मैं अखिल गोप गोपी की मालकिन हूँ, ये सब हमारे बुद्धि का भ्रम था, अब मैं इसको अपना पुत्र नहीं मानूंगी। थोड़े काल के लिए बात आई, बहुत कम समय के लिए, या तो इसके पहले कुछ हरि सूर्य जी के वाक्यों से आस्वादन किया जाए, भगवान मिट्टी क्यों खाए, बच्चों ने शिकायत क्यों किया, पहले तो ये बात बता रहे, बच्चे क्यों जाकर माँ से कहे, एक उत्प्रेक्षा कर रहे हैं हरि सूर्य जी, अस्मान गृहीतैव रसोपभुक्तिम एतावदेशो विदधे धुनातु अस्मान प्रतार्ज स्वयमा तनोति तद्भक्तमस्य इतिजुक्तमुच। बच्चों ने सोचा कि अब तक जितना भी रसोपभुक्ति किया कृष्ण, रस की उपभुक्ति, रस खाया मतलब माखन दही दूध जो भी खाया इसको रसोपभुक्ति कहते, और रसोपभुक्ति रसा उपभुक्ति और रस उपभुक्ति दोनों को संधि करने पर एक ही आया। तो अब तक जितना रस खाया तो हम लोगों के साथ खाया, और आज रसोपभुक्ति एकांत में कर रहा है इसलिए इसकी शिकायत करनी चाहिए। क्यों अकेले खा रहा है, रसा को खा रहा है, रसा उपभुक्ति कर रहा है, रसा मतलब पृथ्वी। अब तक जब भी हम लोग रस खाए तो एक साथ खाए, चोरी किए खाए, और आज एकांत में रस खाने लगा, रसा को खाने लगा, तो शायद इसी से बच्चों ने जाकर माँ से कह दिया। ठीक है बच्चे, तो ऐसे जो बलराम जी ने क्यों कहा, तो बलराम जी ने सोचा कि ये आए हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए, और वो सारी पृथ्वी मेरे सिर पर रहती है। तो बलराम जी ने थोड़ा व्यंग किया माँ से जा करके, ये सोचा है कि ये भार उतारने के लिए आए हैं तो ये दो चार ग्राम मिट्टी खाने से भार उतरेगा, ऐसे तो भार उतरेगा नहीं। तो शायद उन्होंने इसलिए शिकायत किया कि अब ये काम बंद करो, इससे भार मेरा दूर नहीं होने वाला है, पृथ्वी बहुत भारी है। शायद भगवान राम ने व्यंग किया माँ जसोदा से, ये इस तरह से कर रहा है, इसको रोको, असली भूभार हरण जो करना है वो करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि थोड़ा थोड़ा धूल खाने से पृथ्वी हल्की हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात भगवान ने सोचा, हरिश्वर जी बहुत दूर तक विचार ले जाते हैं, भगवान अपने घर की मिट्टी खा रहे हैं, अपने आंगन की, और ये जानते हैं कि हमारा अपने घर की मिट्टी खाना भी ये गोप सखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहन नहीं करेंगे, ये जाकर माँ से शिकायत करेंगे तो हमको एक बहुत बड़ा पॉइंट मिलेगा ये कहने का कि माँ जब मैं अपने घर की वो भी मिट्टी खा रहा हूँ और इसको ये लोग सहन नहीं कर सकते हैं, तो बताओ इनके घर में मैं इनका माखन खाऊंगा कभी ये सह सकते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? इनके घर की मिट्टी खाऊंगा तब भी ये नहीं सहन करेंगे, और दही दूध घी इतना दानी बन गए हैं सहन कर जाएंगे। तो आज तक जो भी शिकायत आई है सब झूठ हो जाएगी, ये प्रमाण दूंगा माँ को, यही सोच करके वे खा रहे। स्वगेह गत मृतिका अदनम असह्यम एसाम अभूत मया यदि परालया धृतमी में सहेरन कथम परालयाद घृतमी में सहेरन कर, अपने घर की मिट्टी खा रहा हूं तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, और दूसरे के घर का घी खाऊंगा तो बर्दाश्त कर जाएंगे, इतने बड़े हो गए। इति स्वकृत तादृश आचरित गुप्त है, अपनी चोरी लीला पर पर्दा डालने के लिए, छिपाने के लिए श्रीपति व्यधात मृदसनम पुरह किमु तदीर तो है क्षण, श्रीपति ने इस तरह की लीला किया। भगवान बराबर ये विचार करते रहते थे कि कैसे गोपियों के अभियोग को माँ यशोदा के सामने मैं मिथ्या सिद्ध कर दूं। तो शायद इसीलिए मिट्टी खाए और दिखाए कि लोग मिट्टी खाना बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये माखन दूध दही खाना सह जाएंगे? नहीं, माँ सहज, माँ को घटना याद आएगी, कभी भी शिकायत लेकर के आएंगे, आएंगी गोपियां तो माँ कहेगी उस दिन घर का मिट्टी खाया था बर्दाश्त नहीं हुआ, तुम लोग इतना बर्दाश्त की, झूठ बोल रही, मान जाएगी। शायद इसीलिए भगवान मिट्टी खाए। और हरिश्वरी जी एक भाव भी कहते हैं कि आयुर्वेद कहता है कि कोई व्यक्ति यदि बहुत घी दही आदि खूब खा लिया हो और पेट चिकना हो गया हो तो कुछ रूखा चीज खाना चाहिए, तब जा करके पेट की सफाई होती। तो भगवान ने सोचा कि बहुत नवनीत खाया, बहुत चिकना पदार्थ खाया, अब थोड़ा सा पेट की चिकित्सा करनी चाहिए, इसीलिए मिट्टी खाने लगे। मिट्टी खा करके और कब्ज दूर कर रहे हैं। तो संस्कृत में धूली को विष कहा जाता है, मिट्टी को विष कहा जाता है। मिट्टी खास करके पानी में भींगे हुए मिट्टी को विष कहा जाता है, एक अर्थ भी है। तो भगवान ने सोचा कि मैं पहले बहुत विष पी लिया हूँ पुतना का, और शास्त्र कहता है विषस्य विषम औषधम, विष की दवा विष है, तो थोड़ा ये विष खा करके पहला विष उतार दूँ, इसलिए शायद वो खा रहे थे विष। अच्छा, और मिट्टी खाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था? जत्स्पृह्यं त्रिदशैरलभ्यमशतां धेयं च यद्योगिनां प्राप्तं स्यात् किमु तद् रजो ब्रजगतं गोगोपिका पादगम्। जो चरण रज देवताओं को दुर्लभ है, किसका चरण रज? गो गोपिका पादगम, गौ और गोपियों के चरणों की रज त्रिदशैरलभ्यं, देवताओं को भी दुर्लभ है। असताम ने स्प्रीह, देवता भी उसकी स्प्रिया करते हैं, और असताम अलभ्यम, जो असत हैं, बहिर्मुख हैं भगवान से, उनको धूलि कभी नहीं मिलती है। धेयम च जदजोगी नाम, जोगी लोग इस ब्रज धूलि का ध्यान करते हैं, तो सारे जगत के जीव खास करके देवता आदि चाह रहे थे कि हमको वो रज कैसे मिलेगा, हमको कैसे रज मिलेगा ब्रज का। तो भगवान अपने उदर में अवस्थित समस्त सज्जनों की वांछा को देखकर सोचे कि सबको दे देना चाहिए रज, उनके भीतर सब अवस्थित है। इत्थम भूर निजोद रस्थ जनसद वांछाम चिरम चिंतयन। भगवान ने देखा कि चिर काल से हमारे भीतर रहने वाले अनंत कोटि देवता आदि जीव ब्रज रज की इच्छा कर रहे हैं, तो मन ने पूर्ण दयारण वह किम करो तद भक्षणम तत्कृत। भगवान ने जो भक्षण किया तो उन लोगों के लिए किया, पूर्ण दयारण वह, पूर्ण दया के समुद्र हैं भगवान, इसलिए समस्त जीवों को दिए ब्रज ब्रज रज खा करके। भीतर भगवान के भीतर सारा जगत, तो सबकी सदवांछा को पूरा किए। सब लोग चाहते थे गौ गोपी आदि के चरण रज को हम पाएं, उनके लिए दुर्लभ था, लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा को देह करके दिया भीतर। ये बहुत ऊंचा भाव है। और भगवान ने यह भी सोचा कि नाना विधम बहु रजो गुण कार्य मग्र, हमको आगे चलकर बहुत प्रकार का कार्य करना है जिसमें रजोगुणी काम करना पड़ेगा, जैसे युद्ध करना, घर बनाना, ये करना वो करना, ऐसे सब दिव्य कार्य है भगवान का। जन्म कर्म चमे दिव्यम, परंतु लोक रीति से हरिश्री जी कह रहे हैं कि भगवान ने सोचा कि मुझे बहुत रजोगुणी कार्य करना पड़ेगा, तो अभी से कुछ रजोगुण का संग्रह करना चाहिए, या अपने इस दिव्य सच्चिदानंद शरीर में कुछ रजोगुण पहले से नहीं डालेंगे तो सब काम होगा नहीं। इसीलिए रजह गुण मतलब धूलि भगवान भीतर डाल रहे हैं। विशुद्ध सत्वगुण वाले शरीर से, अप्राकृत शुद्ध शरीर से रजोगुण का काम कैसे हो सकता है? शायद रजोगुण काम करने के लिए मृत स्नान भक्षण मिदम प्रकृतोपयुक्तम प्रायो रजोगुण सुसंग्रहणम चकार। इसलिए भगवान ने रजोगुण का संग्रह किया। अच्छा, और क्या भाव है? भगवान ने सोचा कि रसेति लसिता भिक्षा वर्तते से भूअस्तत। शास्त्रों में कहा गया है पृथ्वी का एक नाम है रसा, और जितने प्रकार के रस हैं सब इसी से निकलते हैं, जितने फल हैं दूध दही कंद मूल सब पृथ्वी से निकलते हैं, और शास्त्र इसको रसा कहता है। तो मैं और सब रस तो लिया लेकिन रसा को अभी नहीं खाया। भगवान सोचे जिघृक्षु तद रसा स्वादम किमीसो अधान मृदोदनम। शायद भगवान ये सुन सुन करके बेचैन हो रहे थे कि भाई रसा है, रसा है मतलब रसमयी है, सारा रस इसी से निकलते हैं, तो अब तक भक्तों ने भी मुझे सब कुछ भोग लगाया, मैं खाया लेकिन अब तक रसा नहीं खाया। ये रसा का उद्धार मैं किया था, हृदयाक्ष ले गया था पाताल में, तो उसको मैं लाया अपने दांत पर, लेकिन खाया नहीं कुछ, तो इसलिए शायद रसा का रसा स्वादन देखने के लिए, चमत्कारिता के लिए भगवान रसा को खा रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। और फिर भगवान ने सोचा कि हमारे जो सखा हैं वो हमारे साथ विश्रृंखल विहार करेंगे, कोई नियंत्रण नहीं रहेगा, हमारे कंधे पर चढ़ेंगे, हमारे साथ युद्ध करेंगे, खेलेंगे, तो इनके कर्मों को सहन करने के लिए यदि क्षमा धारण नहीं करता हूं तो फिर तो लीला हो नहीं पाएगी। क्षमा का अर्थ होता है पृथ्वी, जो सब कुछ सहन करने में समर्थ है, क्षमा, क्षमा या क्षमा दोनों एक ही शब्द। तो भगवान ने सोचा कि अपने भक्तों के साथ जो मैं विहार करूंगा, उच्छृंखल विहार करेंगे, तो क्षमा धारण करना चाहिए, इससे मैं इनके हरकतों को क्षमा करता रहूंगा, इसलिए वे क्षमा का एक अंश ग्रहण किए। क्षमा शब्द से अर्थ कर रहे विश्रृंखल विहारिणो मदवमान चेष्टा जुसो भवंति शिशवो अखिला अपि जदत्र मत क्रीडनम क्षमांश विधृतिम बिना नहीं भवेत स्व भक्ते स्विति प्रभु किमु चकार तत्कृति कृतितया क्षमा धारणम। क्या भगवान ने इसलिए क्षमा धारण किया, यह अर्थ। ये सब जो काव्य है वो काव्य को जानने वालों के लिए बड़े आनंद की बातें हैं। इसके बाद तुरंत ही भगवान विश्व रूप दिखाने वाले हैं माँ को, मतलब मिट्टी खाने के बाद तत्काल विश्व रूप दिखाने वाले हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं विश्व की सृष्टि करूंगा अपने मुख में, तो बिना रजोगुण के तो सृष्टि होती नहीं है, तो शायद भगवान ने इसीलिए रजोगुण को अपने मुख में रखा कि यही सृष्टि करेगा। तो माँ जब मिट्टी उगलवाएगी तो सारा विश्व दिखाएगी। तो हरिश्वर जी कहते हैं कि अभी अभी विश्व की सृष्टि करनी है, और विश्व की सृष्टि बिना रजोगुण के नहीं होती है, इसीलिए भगवान पहले रजोगुण स्वीकार की। और इसके द्वारा भगवान यह भी सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में भगवान में न रज है, न तम है, न सत्व है, कुछ नहीं है। विश्व की जब सृष्टि करनी होती है तब वे रजोगुण को स्वीकार करते हैं, पालन करना होता है तो सतगुण स्वीकार करते हैं। तो अभी अभी सृष्टि करनी है तो उसके लिए रजोगुण को स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सुंदर सिद्धांत यहाँ व्यक्त हुआ है। भगवान में अपने आप रजोगुण नहीं है या तमोगुण नहीं है, लेकिन वे स्वीकार करते हैं। तो आगे विश्व की सृष्टि करनी है अपने मुख में, तो इसलिए भगवान ने रजोगुण स्वीकार किया और उसके द्वारा सृष्टि करके माँ को दिखा दी। फिर भगवान कहते हैं कि मये व सर्वार प्रतिभावनाये मान्या ही ते में त्रुति किम वाच्यम। जो सब तरह से मुझ में अपनी भावना अर्पित कर दिए है, मेरी भक्ति में रत है, मेरी सेवा में, तो वे मेरे लिए मान्य हैं, आदरणीय है, इसमें तो कहना ही क्या है। मुख्यम तदीयांग्री रजो पिमे स्याद इत्यच्युतो धात स्फुटमात रेणु। उनका चरण रेणु मेरे जीवन का मुख्य है। वे तो मान्य है ही, और उनके चरण का जो रेणु है, धूलि है, वो मेरे लिए मुख्य है। हमारे जीवन में उसका सबसे बड़ा महत्व है। तो मुख्य का मतलब हमारे मुख में अस्थित, और मुख्य मतलब प्रधान। भक्तों का चरण रज मेरे लिए मुख्य है, मुख का विषय है भगवान, इसलिए मुख में चरण रेणु रह करके सूचित कर रहे हैं। और भगवान ने यह भी सोचा कि जैसे भगवान के दांतों में मिट्टी लगी थी उस समय जब खा रहे थे, मिट्टी से ही तो खा, दांत से ही तो खा रहे थे, तो दांत को द्विज कहा जाता है संस्कृत में, दो बार जन्म लेता है, एक बार दांत टूट जाता है, दूसरी बार जन्म लेता है, तो दांत को द्विज कहा जाता है। तो भगवान ने सोचा कि मैं जो अवतार लिया हूँ, तो इस जगत के जो द्विज हैं वे लोग तो पूजा पाठ आदि में लगे रहते हैं, सत्वगुण उनमें रहता है, तो वे लोग किसी असुर आदि का संहार नहीं करते हैं, ये सत्वगुण में रहते हैं। भगवान ने सोचा कि सारे ब्राह्मण यदि सत्वगुण में रहेंगे, द्विज सारे सत्वगुण में रहेंगे, तो फिर इस जगत में असुर संहार करना मुश्किल होगा। इसलिए भगवान द्विजों को रजोगुण दे रहे हैं, तुम भी रज से युक्त हो जाओ। दांतों को अपने द्विजों को भी रजोगुण दे रहे हैं, एक अर्थ ये लिख। भगवान ने यह भी सोचा कि जब मैं परशुराम अवतार ग्रहण किया था तो सारी पृथ्वी दे दिया था द्विजों को, ब्राह्मणों को, तो ये आशा में होंगे कि उस बार इतना दिए थे हमको, इस बार कुछ देंगे कि नहीं, इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को कुछ पृथ्वी का अंश दे दिया। ठीक है, रख। भगवान परशुराम क्षत्रियों का वध करके और संपूर्ण भूमंडल ब्राह्मणों को दे दिए द्विजों को। तो भाई किसी को कभी कुछ मिल जाता है तो देने वाले आदमी से वो व्यक्ति आशा रखता है कि पहले दिया है तो इस बार भी कुछ देगा। तो एक बार पूरा पृथ्वी दे दिया और इस बार आ करके एकाध चटाक धूलि न दे तो कैसा होगा। तो भगवान ने सोचा कि उस बार संपूर्ण पृथ्वी दे दिया था तो कुछ तो अंश देना चाहिए, इसीलिए मिट्टी का अंश द्विजों को दे रहे थे, ब्राह्मणों को अर्पित कर रहे हैं। इसलिए ये भाव है। बहुत सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं हैं। वैसे अब अंतिम भाव कह रहे हैं कि सम दृष्टि विश्वस्यति नोत माधम वस्तुनि व्यंजयन इति सश्रीसो गव्यवन मृदमादद। जो उत्तम लोग होते हैं उनके दृष्टि में कोई विषमता भेद नहीं होता है, सम दृष्टि होते हैं, वस्तु उत्तम हो चाहे मध्यम, इसीलिए भगवान गव्य की तरह मृत खा रहे। गव्यवन मृदमादद, गव्य मतलब गो से निकला हुआ रस, दूध दही घी, इसको गव्य कहते। तो जैसे गव्य खाते थे वैसे मिट्टी खाते हैं। बड़े लोगों के दृष्टि में कोई भेद नहीं होता है कि अच्छी वस्तु है बुरी वस्तु, तो सम दृष्टि में तो भगवान सबसे बड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने दिखाया कि हमारे मैं सम दृष्टि हूँ, सम दर्शन है, चाहे माटी हो चाहे दूध हो, हमारे लिए सब समान, इसलिए खा रहे। माँ यशोदा ने कृष्ण को जब डांटना चालू किया तो हाथ क्यों पकड़ी, क्या कारण था कि हाथ पकड़ी, तो हरिश्री जी कहते मृदभुक्ति साधन करह कर एवेति जानती। वो जानती थी कि मिट्टी खाने में कर सहायता किया है, हाथ सहायता किया है, इसलिए ये भी अपराधी है। यदि हाथ मदद नहीं किया होता है तो मुख में मिट्टी ये खाता कहाँ से। तो इस हाथ से मिट्टी उठा उठा करके बच्चा खाता है, तो हाथ है, सहायता किया है, इसलिए पहले हाथ को दंडित किया, पकड़ा हाथ, ये ठीक बात। तो इस प्रकार के बहुत ही सुंदर सुंदर भाव हैं। भुक्ता मृद भवते थी, माँ हाथ पकड़ कर पूछती है, भवता मृद भुक्ता, निश्चित तुमने खाया है। भुक्ता मृद भवता इति गोप शिशवो जलपंती रामादयो। राम प्रधान गोप शिशु सभी बता रहे हैं कि तुमने मिट्टी खाई है, और नेति तुम भणसी, और तुम कह रहे हो कि नहीं। तत्र कतमो विश्रम्भणियो माया, मैं किसकी बात मानो, किस पर विश्वास करूं। माँ ने कहा ये सब कह रहे हैं कि तुमने खाया है और तुम कह रहे हो कि नहीं खाया हूं। तो भगवान ने सोचा अच्छा तो क्या करूं कि मेरी बात पर माँ विश्वास कर जाए। तो हरिश्वर जी कहते हैं भगवान ने सोचा उपाय, इत्थम मातृगिरम निशम भगवान तत्संशयोच्छित्त। उसके संशय का उच्छेदन करने के लिए भगवान ने तुरंत विश्वास्यता प्रकट किया। विश्वास्यता का अर्थ होता है आस्य का अर्थ है मुख, और विश्व माने विश्व, विश्वास्यता मतलब जिसके मुख में विश्व की स्थिति है। माँ और भगवान ने सोचा कि अब तो तत्काल विश्वास्यता प्रकट करना है ना, विश्वास्य। तो बड़ा सुंदर भाव है वास्तव में, आस्य का अर्थ है मुख और विश्व का अर्थ है विश्व, जिसके मुख में विश्व है, और विश्वास्यता। भगवान ने सोचा कि कहीं उनकी बात पर विश्वास न करो, अगर वे अपने मुख में विश्वास्यता दिखा दे तो ठीक है, ये मैं तो दिखा दिया, तो मुख्य मेरा जो विश्वास्यता है वो मुख्य है, मुख्य मतलब प्रधान, उन लोगों का गौर है, वो झूठ बोल रहे हैं, मुख्य मतलब मुख में, मुख में विश्वास्यता दिखा दिया, मुख्य विश्वास्यता, विश्वास्य विश्वम आस्य, विश्व प्लस आस्य विश्वास्य, ये तो विद्वानों के चिंतन का विषय है। वास्तव में जो इन शब्दों को समझते हैं, भगवान ने कितना दूर से सोच करके कमाल किया, ये तो और कोई उपाय नहीं देखा तो तत्काल विश्वास्यता कर दिया विश्व में, मुख में भी, और भी मुख्यम विश्वास्यता, केवल विश्वास्यता प्रकट नहीं किया कि भाई विश्व को दिखा दे, और आज मुख्यम विश्वास्यता, अपने मत को भगवान ने कहा देखो हमारा विश्वास्यता मुख्य है, तो इसके द्वारा उन्होंने सिद्ध किया। और फिर कहा कृष्ण ने, एसा मानय मा बचो यभी तथम रामादिका नाम इदम मा, इनकी बात पर कभी विश्वास मत करो। तो माने कहा कि अरे राम कहा है, तो अरे रामादिका नाम अपी, राम से चालू करके जितने हैं सब व्यर्थ बोल रहे हैं। मातर मद वचनम तवे इन तथा जत सत्य वक्ता अस्मि हम, मैं सत्य वक्ता हूँ, कस्मात सत्य मदो वधार्जमिति चेत, अगर तुम यह कहो कि कैसे मैं तुम्हारी बात सत्य मानूं, अवेक्षताम तन्मुख्य स्थिति दित्य दर्श्य दसो किम विश्वमास्ये प्रभु, तो मुख्य स्थिति भगवान ने दिखाया विश्वास्यता, उसी को फिर कह रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि सारा विश्व मुख में दिखाऊं, एक बार तो कह दिए मैं नहीं खाया हूं, और बाद में लगाए थे सर्वे मिथ्याभिशंसिन, तो भगवान ने सोचा कि सर्वे को अगर मैं अपने साथ जोड़ करके बता देता हूं तब भी एक काम चल जाएगा, मैंने ही नहीं खाया सबने खाया है, इसलिए भगवान ने विश्व रूप दिखाया कि देखो सबने खाया है। विश्व रूप दिखाने का यह कारण था कि माँ ये लोग कह रहे हैं कि मैंने मिट्टी खाया है लेकिन ये सब खाए हैं, देखो मेरे भीतर, इसलिए दिखाया। और फिर माँ जब डांटने लगी तो कहे माँ मैं खाया नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी गोद में हूँ, जैसे तुम्हारा दूध पीता हूँ वैसे थोड़ा पृथ्वी जी का दूध पी लिया, तुम भी धरा हो और ये भी धरा है, तो मैंने सोचा कि ये भी मेरी माँ है तो मैं इसका भी थोड़ा सा दूध पी लिया। तो मैं देखता था कि ये केवल नाम की धरा है कि सचमुच में धरा है, जसोदा जी का नाम भी धरा था। एक अर्थ हरिश्वर जी ये किए कि माँ मैंने सोचा कि ये धरा ये भी है और तुम भी धरा हो, तो मैं थोड़ा अंतर जानना चाहा कि नाम भर की धरा है कि सचमुच मेरी माँ है यशोदा है, तो इसीलिए मैं इसका मिट्टी थोड़ा खा रहा था, तुम्हारे दूध जैसा मैं थोड़ा सा चबा रहा था, लेकिन अब नहीं खाऊंगा, ये नाम भर की धरा है, तुम असली माँ हो मेरी, असली हो, ये भाव था। तो माँ यशोदा ने देखा सारे विश्व को तो वितर्क करने लगी, तो चार प्रकार के तर्क की, तो अंत में उसको भगवान की भगवत्ता का आभास हो गया, अथवा ये भाव हुआ कि भगवान नारायण इसके भीतर आत्मस्वर्ज प्रकाशित कर रहे हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, तो वो अफसोस करने लगती है, अहम ममा सौ पतिरेश में सुतो, अहम मैं ब्रजेश्वरी हूँ, ब्रज की ईश्वरी हूँ, और असौ मम पति, ब्रजराज मेरे पति हैं, ऐसा मैं सुतो, ये मेरा पुत्र है, और ब्रज के समस्त धन की स्वामिनी मैं हूँ, गोपियाँ गोप और गौएं ये सब मेरे हैं, जिनकी माया से इस प्रकार की कुमति मुझे घेरी है वही मेरी गति। भगवान के ऐश्वर्य को देख करके किंचित काल के लिए माँ के मन में जो मातृभाव था वात्सल्य भाव था वो तिरोहित हुआ हल्का से, और जब इस प्रकार का भाव आ गया तो बिल्कुल व्याकुल हो गई, घबरा गई, और अब ये लगी कहने कि अब नहीं कभी डांटूंगी, अब चाहे कुछ भी करे, ये तो भगवान है, ये है वो है, इस प्रकार की बात आने लगी। इत्थम विदित तत्वायाम, उसको तत्व विदित हो गया गोपी को। तो तत्व विदित होते ही वात्सल्य भाव लगा के विदा हो जाएगा। तो अब वो कृष्ण को गोद में नहीं उठा रही थी, वही हितैषिणी जो कृष्ण को डांट रही थी, सोचती थी इसको अच्छा खिलाऊंगी पिलाऊंगी, अब उठा नहीं रही थी। तो भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, मैं तो ये सोचा कि मुझे नहीं पीटेगी यदि मैं अपनी ईश्वरताई व्यक्त कर दूंगा, लेकिन ये तो बच गया, मैं पीटा नहीं गया। लेकिन अब जो मुझे दूध पीने को मिलता था, इतना बड़ा प्रेम मिलता था, ये तो अब कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान अपने को फीका मानने लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत पुत्र स्नेहमयी अपनी माया चलाया। माया का यहाँ अर्थ है मोहन शक्ति, मोह ले, इसलिए उसको माया कहते हैं। माया का अर्थ यहाँ ये प्रसिद्ध माया नहीं समझना चाहिए, वैष्णवी माया। वैष्णवी का अर्थ है सर्वव्यापक, और वो भी पुत्र स्नेहमयी। पुत्र स्नेहमयी माया भगवान ने गोपी में संचारित कर दिया, यशोदा ने। ये मेरा पुत्र है और पुत्र के प्रति स्नेह उमड़ गया, इस प्रकार का भाव जब भगवान ने संचारित कर दिया माँ यशोदा के हृदय में, तब उसका तत्व ज्ञान चला गया। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी, तत्काल ही उसकी स्मृति नष्ट हो गई, ये याद बिल्कुल नहीं रहे कि इसके मुख में मैं विश्व देखी थी, या ये भगवान है या ये है वह, सब नष्ट हो गया। सद्यो नष्ट स्मृतिर गोपी सारोप्या रोहमात्मजम, तत्काल इन्हें स्मृति नष्ट हो गई कि ये भगवान है, चाहे इसके मुख में मैं कुछ देखी थी, तत्काल वैसे स्मृति नष्ट हो गई जैसे सपना में कोई कुछ देखे और जगने पर वो तिरोहित हो जाए। तो जगने के बाद तो कुछ कुछ स्मृति रहती है, लेकिन माँ यशोदा को कुछ भी स्मृति नहीं रह गई कि इसके भीतर मैं सारा जगत देखी ये देखी। तो तत्काल ही आरोहम आत्मजम आरोप्या, और तुरंत ही बच्चे को अपने गोद में उठा ली। वही वात्सल्य भाव, वही पुत्र स्नेह उमड़ गया, और तत्काल बच्चे को गोद में उठा करके, और पहले जैसे स्नेह से भरी हृदय वाली थी, दूध पिला रही थी, वैसे उनको लेकर दूध पिलाने लगी। तो ब्रज में भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित पाता है, थोड़े काल तक प्रभाव डालता है, लेकिन फिर तुरंत तिरोहित हो जाता है, केवल माधुरी विशेष बनी रहती है। ये माँ यशोदा का भाग्य, महाभाग्य, कि उमड़ा हुआ ऐश्वर्य भी उसके पुत्र भाव को कुंठित नहीं कर सका, तत्काल फिर पुत्र मानने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अहो भाग्य है माँ यशोदा का, त्रैया चोपनिषद्भिश्च सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान महात्म्यम हरिम सामान्यतात्मजम्। वेद के जो कर्मकांड विभाग हैं, वे लोग भगवान का वर्णन यज्ञ पुरुष के रूप में करते हैं। भगवान यज्ञ भोक्ता हैं, समस्त कर्मों के भोक्ता हैं, यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना की जाती है, इंद्र आदि उनके नाम होते हैं, और उपनिषद भी, उपनिषद के अनुसार साधना करने वाले लोग उन्हें ब्रह्म मानते हैं, बहुत बड़ा, सब चीज में बड़ा बृहद, और उपासना करते हैं ज्ञान मार्ग से। कर्म मार्ग से त्रयी के द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना होती है, और उपनिषद के द्वारा ब्रह्म की, सांख्य के द्वारा पुरुष की जो प्रकृति का स्वामी है, और योग के द्वारा परमात्मा की आराधना होती है हृदय में अवस्थित, और सात्वत लोग भगवान की आराधना करते हैं। उन्हीं कृष्ण की आराधना भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरह से करते हैं, लेकिन सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में भजते हैं, कोई ब्रह्म के रूप में, और कोई पुरुष के रूप में, और कोई परमात्मा के रूप में, और कोई भगवान के रूप में, अपनी अपनी अभिमति है। लेकिन यशोदा किस तरह से कृष्ण से प्रेम करती है, सा आत्मजम अमन्यता, वो केवल यही मानती है कि कृष्ण हमारे आत्मज, हमारा पुत्र है। उसके मन में कभी नहीं आया कि परमात्मा है, भगवान है, ब्रह्म है, यज्ञ पुरुष है, या परमात्मा, ये भाव कभी नहीं आता। उपगीय मान महात्म्यम, यद्यपि भगवान की महिमा सात्वतों द्वारा, सांख्य द्वारा, योग द्वारा, उपनिषदों द्वारा और त्रयी द्वारा प्रतिपादित है। अर्जुन ने भगवान का रूप जब देखा, विराट रूप, तब वो बताते हैं अरे आप इतने बड़े हैं, महान हैं, ये हैं, वो हैं, और उस समय अपने प्रेम के कारण किए गए व्यवहार को अपराध मानने लगे कि अब तक हमने आपको जो जदुनंदन कह दिया, सखा कहा, जादव कहा, ये सब मैंने बहुत गलती किया, बहुत अपराध। फिर वही रथ हकवाना चालू किया, सब विस्मृत हो गए। लेकिन अर्जुन तो बहुत देर तक इस भाव में रहे, और माँ जसोदा में यह तो बस एक दो मिनट के लिए भाव आया कि ये लगता है कि ईश्वर है, भगवान है बाद में, लेकिन आत्मजम अमन्यतम, आत्मज ही माना और कुछ नहीं माना। और उनको गोद में लेकर दूध पिलाना, खिलाना, पिलाना, सहलाना, पहले वो थोड़ा डर गए कि अरे मैं भगवान को डांट रही हूँ, या नारायण का आवेश इसके भीतर होता है तो मैं नारायण को डांट रही, भगवान को डांट रही, लेकिन तुरंत भाव बदल गया। अमन्यता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भक्त को भी चाहिए कि वो भगवान के साथ अपना एक संबंध स्थापित करे, और चाहे और लोग जिस भाव से भगवान को भजते हों, लेकिन उसको अपने भाव का ही पोषण करना चाहिए। जैसे जसोदा, चाहे दूसरे के लिए, दूसरे लोग कृष्ण को यज्ञ पुरुष अमन्यंत मानते हैं, कोई परमात्मा मानते हैं, कोई ब्रह्म मानते हैं, कोई भगवान मानते हैं, और उसके अनुसार पूजा करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जसोदा क्या मानती है? अपना पुत्र, बस। तो हम क्या मानते हैं? तो देखना चाहिए अपना अपना कि हम अब तक क्या माने। अभी तो भगवान से नीचे नहीं उतरे होंगे हम लोग, वैष्णव लोग तो भगवान तक मानते हैं, और लोग दूसरे दूसरे ज्ञानी लोग ब्रह्म परमात्मा मतलब भगवान के ही एक प्रकाश विशेष को मानते हैं। लेकिन जैसे आप देखें यज्ञ पुरुष केवल मानना, केवल ब्रह्म मानना, परमात्मा मानना, जैसे भगवान भगवत धारणा का एक आंशिक रूप है, उसी तरह कृष्ण को भगवान मानना पुत्र मानने के की अपेक्षा एक आंशिक भाव है, पूर्ण नहीं है। पुत्र मानना यही पूर्ण भाव है, या अपना संबंधी मानना, अपना प्रियतम मानना, अपना स्वामी मानना, केवल भगवान मानना ये ठीक नहीं। मैं किसी किसी बच्चे से कभी कभी पूछता हूँ, तुम भगवान को अपना क्या मानते हो? ये बड़े लोगों से भी पूछा गया तो कहते भगवान, फिर भगवान तो है ही, आप क्या मानते हैं? तो कुछ नहीं। जैसे आप किसी को अपना पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, और कहा जाए कि आप उसको क्या मानते हैं, तो कहें कि हम मनुष्य मानते हैं। मनुष्य तो है ही वो, अब मानिए मत मानिए, लेकिन आप उस मनुष्य को अपना क्या मानते हैं? भगवान तो भगवान है, वो बिना मान्यता के ही भगवान है, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन हम क्या मानते हैं उनको, इसकी मुख्यता है। यहाँ अमन्यता शब्द सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, और वास्तव में साधना इसी का नाम है कि भगवान को अपना संबंधी मानकर, संबंधी मतलब अपना पुत्र, अपना सखा और अपना प्रियतम, ये तीन मुख्य हैं, और अपना स्वामी, ये चार बातें हैं। इनमें से कुछ मान करके और उसी भाव के अनुसार कृष्ण से प्रेम किया जाए, और उसी प्रेम भावना से प्रेरित होकर उनकी सेवा हो, यही बस साधना है, यही सिद्धि। तो और लोग चाहे भगवान की कितनी स्तुति करें, पूजा पाठ करें, लेकिन जसोदा रात दिन केवल कैसे उसके लिए माखन निकालूं, कैसे उसको डांट डपट कर ठीक रखूं, ये करूं, यही करती थी। शायद जसोदा ने कभी भी कृष्ण की आरती नहीं किया होगा, ओम जय जगदीश हरे कह करके। आजकल तो लोग ये स्तुति बहुत गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सारा दुनिया का धन हमारे घर में आ जाए, और हमको जो कुछ कष्ट है वो सब मिट जाए। ठीक है, जो लोग भजन नहीं करते हैं उनकी अपेक्षा ये अच्छा है। भगवान को प्रणाम करने से दुख मिटता है, नाम जपने से पाप नष्ट हो जाता है, ये तो स्वाभाविक। जैसे सूरज के सामने आने पर अंधकार नहीं रहता, तो भगवान की शरण लेने पर दुख तो मिट जाता है, लेकिन हम भगवान का भी दुख मिटावें ये सोचना चाहिए। परस्परम भावयंत, यही मुख्य चीज है। जशोदा का जो भाव है यह भक्ति शास्त्र में बहुत उच्चतम भाव है। राधा रानी के भाव के नीचे यही भाव, मतलब विकसित भक्ति रस की का जब विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं रूप गोस्वामी पाद, तो वात्सल्य रस को चौथी भूमिका में रखते हैं। बहुत ऊंचा भाव। और दूसरे लोग स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या क्या पूजा, किस तरह ध्यान, यह वह, बड़ी बड़ी यज्ञ आराधनाएं, लेकिन यह गोपी केवल आत्मजम अमन्यत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि त्रयी के द्वारा इनको यज्ञ पुरुष मानकर यज्ञ द्वारा भजन होता है, और योगी लोग परमात्मा के रूप में लाखों लाख वर्ष में हृदय में देखते रहते हैं, हृदय कमल कर्णिका पर विराजमान चरण भगवान के खिला हुआ, और वास्तव में ध्यानावस्थित तद गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगी। ये भी सब बड़े ऊंचे भाव हैं। यह ब्रह्म मानते हैं, जगत का नियंता। ब्रह्म का अर्थ है प्रकृति से पार स्थिति, सब कुछ अप्राकृत, ब्रह्म का मतलब ये। और ऐसे पुरुष को, भगवान को, जसोदा आत्मजम अमन्यत। तो यह बहुत बड़ा भाग्य है, यह बहुत बड़ी सिद्धि है। वास्तव में सबसे बड़ा ज्ञान यही है, भगवान को ऐसा मानना। इसीलिए महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, यह सौभाग्य मानकर कि यशोदा के सामने भगवान का वह अप्रतिम ऐश्वर्य प्रकट हुआ, लेकिन फिर भी उसके भाव में थोड़ी भी गिरावट नहीं हुई। वो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती रह गई, और उसी तरह से चुंबन, प्यार, खिलाना, पिलाना, सहलाना, सुलाना। तो इस पर महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मन, नंद महाराज ने कौन सा पुण्य किया था, और यशोदा ने क्या सुकृत किया था कि उसका स्तन भगवान पिए। महाराज परीक्षित का मन बिल्कुल आंदोलित हो गया, इंप्रेस्ड हो गया इनके भाग्य को देख करके, इनके भाग्य की वार्ता को सुन करके। राजा जी पूछते हैं, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपौ जस्या स्तनम हरिः। हे ब्राह्मण, हे सर्वज्ञ, नंद एवं किम महोदयम श्रेय अकरोत्, महान पुण्यमय श्रेय साधन नंद महाराज के द्वारा क्या हुआ था, नंद महाराज ने क्या किया था बड़ा काम, जैसे श्री कृष्ण उनके पुत्र हुए। यह जो सुख उनको मिला, नंद महाराज को और यशोदा को, श्री कृष्ण को दूध पिलाने का और पुत्र भाव से उनके पालन का, यह जो उनको महासौभाग्य महासुख मिला, यह किस पुण्य का फल था, उन्होंने क्या किया था, और यशोदा ने क्या किया था, महाभागा यशोदा, उसने क्या किया था, कृपा करके बताइए। यह क्यों महाराज परीक्षित पूछ रहे हैं कि उसी प्रकार का सुकृत मैं करूँगा, जानकारी हो जाएगी तो इस जन्म में नहीं कर सका तो भावी जन्म में करूंगा, अथवा और लोग जो जीवित रहेंगे वे सुन लेंगे तो वही सुकृत करेंगे, जैसे कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में वे माने। इस संसार में देख रहे हैं, किसी भी माता पिता के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए किसी बच्चे को पुत्र मान लेना कितना स्वाभाविक है। पता नहीं है कि कहाँ का बच्चा है, पहले कहाँ जन्म लिया था, लेकिन इस बार आ गया बच्चा अपने गोद में, गर्भ में रह गया माँ के, इसके बाद गोद में आ गया, तो स्वाभाविक प्रीति हो जाती है। जब पहले से कोई परिचय नहीं है, कहाँ का था, किसका बच्चा पहले था, किस योनि से आया, लेकिन केवल इस देह का संबंध हो गया तो आदमी की देखिए प्रीति उसमें। तो क्या इस तरह की प्रीति भगवान में नहीं हो सकती है? यदि किसी का पुत्र भगवान बनकर के आ गए तो ऐसी ही प्रीति होगी, और अब वास्तविक स्थान पर वास्तविक अधिष्ठान में प्रीति होगी, वास्तविक जगह पर जहां होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि जीव में प्रीति करना, स्नेह करना, ये स्वाभाविक है, ये लाना नहीं है बाहर से। जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चे से प्रेम करने की जो प्रवृत्ति मनुष्य में है वो कहीं बाहर से नहीं सीखता है, ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। बच्चा गोद में आया, गर्भ में आया, स्वाभाविक स्नेह होने लगता है। ये दूसरे जीवों में भी है, गाय में, पक्षी में। बच्चे होते हैं पक्षी के तो लाला करके चारा देता रहता है, चुगाती रहती है माँ। गाय बच्चे का पालन करती है, दूध पिलाती है। तो जीव में कुछ बातें स्वाभाविक हैं, और स्वाभाविकता का मूल आधार क्या है? इसलिए कि कृष्ण से जीव का वह मूल संबंध है, बिल्कुल स्थापित है, वह मूल में वो पड़ा हुआ है, वो चीज है। इसलिए अपने वास्तविक आश्रय को न पा करके दूसरे में वो विकीर्ण हो रहा है। जब कृष्ण पुत्र रूप में नहीं मिले हैं तो दूसरा मिला है तो उसी में चलो, उसी को खिलाना पिलाना सहलाना करना। तो आदमी चाहे तो अपनी वात्सल्य प्रीति को भगवान में ढाल सकता है। आप भागवत के इस प्रकरण को ध्यान से सुनिए कि महाराज परीक्षित कहां पर प्रश्न कर रहे हैं। जहां पर जसोदा भगवान को पुत्र मान करके उनके प्रति प्रेम करती है वहां पर इनका प्रश्न हुआ। जब उसने विश्व रूप देखा तो उस समय नहीं प्रश्न हुआ कि जसोदा तो बहुत भाग्यशाली है, भगवान का विराट रूप देखी, ये देखी, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, उसने क्या पुण्य किया था, यह प्रश्न नहीं हो रहा है। जब यह सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण को वो आत्मज ही मानती थी, तब कहते उसने क्या पुण्य किया था। तो इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण को वही व्यक्ति अपना पुत्र मानेगा, अपना प्रियतम मानेगा या सखा मानेगा, अपना परम स्नेही प्रेमी मानेगा, जो भूरी भूरी पुण्य किया है, महात्मा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुन, सुकृति होगा, बहुत बहुत किया होगा, वही कृष्ण को, कृष्ण के प्रति अपना दृष्टिकोण ऐसा कर सकता है। और नहीं तो बहुत बहुत प्रार्थनाएं स्तुतियां चलती हैं, बहुत प्रकार के पाठ किए जाते हैं, और पूछिए कि भगवान आपके क्या हैं, तो बस जगदीश्वर हैं, भगवान हैं, हम पर देख देंगे, हमारा दुख दूर हो जाएगा। तो यह दृष्टि पूर्ण नहीं है, यहां तक कि भगवत दृष्टि भी पूर्ण नहीं। कृष्ण भगवान हैं, विश्व के सृष्टिकर्ता हैं, प्रभु हैं, छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जीव उनका नित्य दास है, ये है वह ठीक है, लेकिन वे आपके क्या हैं, ये जानना चाहिए। तो भगवान का भी प्रयास आपने देखा कि उन्होंने देखा कि जब मां का तत्व भाव हो गया, थोड़े काल के लिए इसका भाव तिरोहित सा हो रहा है कि कृष्ण मेरा पुत्र है, ये भाव थोड़ा सा विचलित हुआ तो भगवान ने तत्काल पुत्र स्नेहमयी माया का प्रसार किया। इसका मतलब है कि कृष्ण को भी वही अभीष्ट है, लेकिन ईश्वर तो है ही, इसलिए थोड़ा खेलने के लिए कई प्रकार का तमाशा कर रहे हैं, थोड़ा ऐश्वर्य दिखा करके देख। लेकिन भगवान को भी गरज है, वो भी उसी के लिए ललायित कि हमको ये स्नेह मिले। भगवान को और चीज की कमी नहीं है, उनको प्रेम की कमी रहती है, वो प्रेम रस के आस्वादक हैं, चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भी तत्काल तिरोहित कर दिया, और माँ भी मान गई मेरा बेटा है, ओ मैं मेरा लाला, मेरा बच्चा, फिर उठा ली गोद में। अरे मैं क्या सोच रही थी, क्या फालतू सोच रही थी, ये तो हमारा बच्चा, वो भूल गई सारा विश्व रूप दर्शन आदि। क्यों इनका, इनके भाग्य की सराहना कर रहे हैं? तो परीक्षित महाराज कहते हैं, पितरो नानव विंदेताम कृष्णो दारार्भ के हितम। कृष्ण के उदार बाल चेष्टा को तो लोक में प्रसिद्ध माता पिता देवकी वसुदेव भी नहीं पा पाए। यहां पितरो का अर्थ है लोक में माता पिता के रूप में प्रसिद्ध। पितरों का अर्थ नहीं कि नंद बाबा और जसोदा पिता माता नहीं है, वो तो असली तो मतलब पिता माता नंद जसोदा हैं, लेकिन लोक दृष्टि से जो प्रसिद्ध माता पिता हैं, देवकी वसुदेव भी कृष्ण के इस उदार बाल चरित को नहीं देख पाए। उदार का क्या अर्थ है? उदार का अर्थ आप सभी जानते हैं, महादानी। तो कृष्ण की ये जो बाल लीलाएं हैं, ये सबसे बड़ा सुख प्रदान करती हैं, सबसे बड़ा आनंद देती हैं। तो इस आनंद को, कृष्ण की बाल लीला के आनंद को, सुख को वसुदेव और देवकी नहीं पा सके, जबकि लोक दृष्टि से वही प्रसिद्ध माता पिता है, वे नहीं पा सके। तो जब कृष्ण और बलराम मथुरा गए तो उसके पहले ही बाल लीला सब संवरण कर लिए, वो देख ही नहीं पाए, यहीं पर किए। तो उदार शब्द पर ध्यान देना चाहिए, उदार अर्भक इहितम, वो भी कृष्णस्य परमानंद घन परब्रह्म, भगवान के उदार बाल चरित के सुख को, उस महासुख को, अद्वितीय सुख को वसुदेव और देवकी नहीं पा सके। उस सुख को नंद जसोदा ने पाया, तो इन्होंने क्या सुकृत किया था, क्या पूर्ण किया था, कृपा करके बताइए। गायंती अद्यापि कवयो जल्लोक समलापहम, अरे जिनकी कीर्ति अथवा भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को आज भी बड़े बड़े कवि गाते हैं, कवियों में सबसे बड़े कवि भगवान शिव हैं, शिव ब्रह्मा नारद सनकादि के सब आज भी गाते रहते हैं। गायंती अद्यापि, या नंद जसोदा के भाग्य की बड़ाई करते हैं या कृष्ण की बाल लीला गाते रहते हैं। और उदार शब्द से और गायंती शब्द से जोड़िए नाता, अगर नंद और जसोदा ने जो सुख पाया कृष्ण की बाल लीला देख करके, तो वही सुख कृष्ण की बाल लीला को गा करके कभी लोग पाते हैं, ब्रह्मा शिवादि। गायंती अद्यापि, उसी लालसा से वर्णन करते हैं, सुनते हैं, और इसके साथ ही साथ यही लीलाएं हैं जो लोक के पाप को नष्ट कर देती। कोई ये कह सकता है कि यदि लोक का पाप रह जाएगा तो कृष्ण लीला गाने का आनंद कहाँ से आएगा? तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि लीला का गान ही पाप को नष्ट कर देता है, कलि कल्म सघनम। तो जो अस्प्रिया होती है भक्तों के मन में कि हमको वह सुख मिले, तो नंद जसोदा को जो बाल चरित देख करके सुख मिला, वही गा करके और सुन करके मिल जाता है। इसलिए अद्यापि, आज तक, इसे 2 सितंबर तक अद्यापि गायंती, महाराज परीक्षित को सब मालूम है, सारे ब्रह्मांड में आज तक गाई जा रही लीला, और जेव कहते हो फ्रेश है, जेव कहते हो फ्रेश गाते रहते। क्या उन्होंने पुण्य किया था? बड़ा गूढ़ प्रश्न है, इसीलिए इसका गूढ़ उत्तर भी आएगा। वास्तव में नंद और जसोदा जी तो भगवान के नित्य माता पिता हैं, पर उनके भीतर द्रोण और धरा आए थे, तब नित्य माता पिता की बात, और वहां भाग्य और सुकृत की तो बात ही कोई नहीं है, तो वर्णन से परे है। लेकिन द्रोण और धरा ने क्या सुकृत किया था, सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दे रहे हैं। समय बहुत हो गया ना, कितना हुआ आए? 9:30 हो रहा है, तब तो समय है, मैं समझा 9:45 हो गया होगा। तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, सुनते जाइए कैसे भगवान में पुत्र भाव होगा, कैसे स्नेह बढ़ेगा। आजकल बहुत ज्यादा गोपी भाव की चर्चा बहुत बढ़ गई है संसार में, पर यशोदा भाव और नंद भाव भी तो सुनिए। कवि लोग तो आज तक इसी के फेर में पड़े हैं कि मैं कृष्ण की माँ बन जाऊं, दूध पिलाऊं, और अधिक वर्णन इसी का है श्रीमद् भागवत में। तो द्रोणो वसूनां प्रवरो धरया भार्जया सह करिष्यमाणे आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाचः। जब महाराज परीक्षित ने यह कह दिया कि देवकी और वसुदेव इस सुख को नहीं पा सके, तब सुखदेव गोस्वामी मानो आश्वासन देते हैं, अरे महाराज परीक्षित, वो देवकी और वसुदेव ही नंद जसोदा है। कम से कम नाम साम्य से बता रहे हैं, द्रोणो वसूनम प्रवरो, वसुओं में सर्वश्रेष्ठ वसु हैं द्रोण, तो इसलिए उनको वसुदेव कहते हैं। जो वसुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं वे हैं वसुदेव, जैसे नरों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको नरदेव कहते, तो वसूनाम प्रवर, वसुओं में जो प्रकर्षण वर श्रेष्ठ हैं वे हैं वसुदेव, उनका नाम था द्रोण। तो द्रोण नाम के एक वसुदेव हैं वसुओं में श्रेष्ठ, और धरा नाम की उनकी पत्नी थी, तो इन दोनों ने ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि तुम सृष्टि करो, तो उनके आदेश को स्वीकार किया, अथवा इनको एक आदेश हुआ, ये पुराणांतर में कथा है। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया धरा और द्रोण को कि तुम लोग पृथ्वी पर जाओ और गोपालन करो, गोरक्षा करो। ये दोनों प्रजापति वसु थे, वसु समझ रहे हैं देवताओं में एक जाति होती है, तो देवलोक के निवासी थे, वैसे शुरू से ही भगवान के परम भक्त थे, और ब्रह्मा जी इनके गुरु थे। तो ब्रह्मा जी से एक बार उन्होंने पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोग जाओ भूमंडल पर और गोपालन करो। तो ये दोनों ब्रह्मा जी के आदेश को स्वीकार किए, और ब्रह्मण आदेशन करिष्यमाण, ब्रह्मा जी के आदेश को जब करना चाहते थे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से एक स्पेशल विनय किया, प्रार्थना किया। जातयोर नौ महादेवे भुवि विश्वस्वरे हरौ, भक्ति स्यात् परमालोके जजांजो दुर्गतिम तरेत। भुवि जातयो नौ, जब हम लोग पृथ्वी पर जन्म लें गोप के रूप में, तो महादेव में, हरि में, विश्व के ईश्वर में हमारी परमा भक्ति होनी चाहिए। इन्होंने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा। तो महादेव क्यों कहते हैं? देव का अर्थ होता है क्रीड़ा प्राण। देव के दो अर्थ होते हैं, चमकना और खेलना। तो क्रीड़ा प्राण जो बाल लीला करेंगे, जो बाल लीला परायण है उनमें, महादेव ने महाक्रीड़ा परायण में, महादेव का अर्थ जो हरि महाक्रीड़ा परायण है, बाल लीला करते हैं और विश्वेश्वर हैं, विश्व को अपने कंट्रोल में रखते हैं, मतलब उनके सामने जो भी जगत रहेगा वो उनके बस में रहेगा। जैसे गोपियां उन्हीं को देखती रहती थी, गायें उनके नियंत्रण में रहती थी, मतलब सबको बस में रखने वाले, सबको आकृष्ट करने वाले, सर्व मनोहर भगवान में जो अपने बांसुरी से, अपने बाल लीला से सबको अपने बस में रखते हैं और महाक्रीड़ा परायण हैं, ऐसे भगवान में हमारी परमा भक्ति होनी चाहिए। परमा माने, परमा का अर्थ है कि अब उससे बढ़ करके कोई भक्ति न हो, और भक्ति मतलब प्रेम, हमारी परमा भक्ति होनी चाहिए, परम प्रेम, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अनायास ही दुर्गति को पार कर जाता है। यह दुर्गति का अर्थ है कि भगवान में यदि ममता के अलावा और कोई दूसरा भाव हो तो ये सब दुर्गति है। दुर्गति का अर्थ यहां नरक भोग आदि ही नहीं है। दुर्गति मतलब, गति मतलब जीव का स्वरूप, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, स्वरूप और गति एक कहता है। तो जो जीव की दुर्गति क्या है कि वो दूसरे को अपना पुत्र मान रहा है, दूसरे को अपना प्रियतम मान रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या भगवान का भी भजन करने चला तो उनको भगवान मान लिया, ब्रह्म मान लिया और ये कर लिया, दूर का भाव, ये सब दुर्गति। ऐसा प्रेम होना चाहिए कृष्ण में कि हम और सब दुर्गति से पार हो जाए। तो ब्रह्मा जी पूछे कि ये क्या मतलब है, आप लोग आप क्या चाहते हैं? तो आगे के श्लोक में प्रकट हुआ है कि ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने, पुत्री भूत जनार्दन, जो पुत्र बने थे उस जनार्दन में, पुत्री भूत जनार्दन में इनकी भक्ति थी, भगवत भूत जो भगवान के रूप में है उनमें भक्ति नहीं थी, पुत्र बने हुए भगवान में भक्ति। या पुत्री भूत का अर्थ है कि जो सदा उनका पुत्र रहते हैं, अथवा किसी का सदा पुत्र रहते हैं उनमें भक्ति, और हमारा वे पुत्र हो ये भाव है। पुत्री भूते जनार्दने भगवती, उसमें उनकी भक्ति हुई, ऐसा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। बड़ा गूढ़ वर्णन है, इस गूढ़ भक्ति को गूढ़ शब्दों में व्यक्त किया गया है, और दुर्गति शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। इनके दृष्टि में पुत्र भाव के अलावा कृष्ण में और कुछ भाव होना दुर्गति थी। हम दुर्गति से बच जाएं और कोई ऐश्वर्य भाव न उदित हो, कृष्ण का ऐश्वर्य भाव मन में उदित होता था तो दुर्गति, जैसे अभी अभी दुर्गति से पार की मां यशोदा, कि क्या हो गया, सपना है कि क्या है, ये हो गया, ये दुर्गति। तो इस दुर्गति से जैसे जीव आसानी से पार कर जाए, ऐसी प्रीति होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए भगवान, और वही हुआ। ततः भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्योर नितराम आसित गोप गोपी सुभारत। तो पुत्री भूत भक्ति हुई उन दोनों की, दंपत्यो, और वो भी भक्ति कैसी थी, नितराम, नितराम भक्ति हुई भगवान में, पुत्री भूत भगवान प्रेम हुआ, भक्ति मतलब प्रेम। गोप गोपी सुभारत, अब इसका क्या मतलब है, तो पुत्री भूत जनार्दन में भक्ति हुई और उस पुत्र के पालन पोषण में जितने लोग लगे थे, गाय गोप गोपी सब में इनकी प्रीति थी। तत्पुरुषे च सख्यम, और नहीं कि भगवान के साथी है शिव जी ब्रह्मा जी और सब देवता सब उनके सेवक हैं, काम कर रहे हैं, तो उनमें बहुत प्रीति है। पुत्री भूत भगवान है तो पुत्र के पालन पोषण में जिन जो लोग सहयोग दे रहे थे, प्रेम कर रहे थे, उन्हीं में इन लोगों की भक्ति थी, उन्हीं से प्रेम था। अच्छा, ये तो इनकी तो भक्ति थी ही। अतः कृष्णो ब्रह्मण आदेशम सत्यम कर्तकुम ब्रजम भी ब्रजे भी हु। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी तो हमारे सबसे बड़े भक्त हैं इस ब्रह्मांड में, हमारी सेवा करते हैं, सृष्टि करते हैं, अगर उन्होंने कुछ कह दिया है, आशीर्वाद दिया द्रोण और धरा को, तो ब्रह्मा जी के आदेश को सत्य करने के लिए श्री बलराम के साथ कृष्ण ये सब लीला करने लगे। उनके भक्ति से तो प्रभावित थे ही, मुख्य अर्थ वो है, धरा और द्रोण की भक्ति के बस में होकर किए, लेकिन उनको यह भी बात याद आती थी कि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है, तो ब्रह्मा जी का प्रिय करने के लिए भी यही करते हैं। वसन ब्रजे वसन सह राम विभु का अर्थ सर समस्त, समस्त लीला करने में समर्थ विभु, बलराम के साथ ब्रजे वसन तेसाम प्रीतिम स्वलीलया, और ब्रजवासियों को अपनी लीला द्वारा आनंदित करने के लिए ब्रज में रहने लगे। ये मतलब ये सब लीलाएं करने लगे, प्रीतिम चक्र, ये अर्थ प्रीति कर्म है। लीलाया तेसाम प्रीतिम चक्र, प्रीति उनको सुख दे रहे थे। भगवान कृष्ण की इस बाल लीला के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य था ब्रजवासियों को सुख देना, अनंत सुख देना। तो इस तरह भगवान ने सुख दिया नंद जसोदा को ही नहीं, तेसाम बहुवचन में, और सबको, गोप गोपी नंद जसोदा सबको सुख दिया। तो उनको सुख दिया बाल लीला द्वारा, और हम लोगों को सुख दे रहे हैं श्रवण कीर्तन द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति चाहे तो वही सुख पा सकता है, और यदि श्रवण कीर्तन करेंगे तो उसी लीला में शामिल हो जाएंगे, वैसा प्रेम बढ़ेगा और भगवान की लीला में शामिल हो सकते हैं, ये उद्देश्य। तो यहाँ तक भगवान की इन बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। तो जो अपने वो कृष्ण को अपना पुत्र ही मानती थी, इसलिए रात दिन पुत्र का हित कैसे होगा, इसकी चोरी की आदत कैसे छूटेगी, कैसे स्वस्थ रहेगा, माता रात दिन यही सोचा करती थी, इसी काम में लगी रहती थी। आए? क्या कोई छूटा है? ओह छूट गया। हाँ अस्तु इति उक्तः स भगवान ब्रजे द्रोण महाजसा जज्ञ नंद इति ख्यातो जसोदासा धारा। तो ब्रह्मा जी ने जब वर दिया तो वही द्रोण जी नंद महाराज हुए और धारा उनकी पत्नी जसोदा के रूप में हुई, तो उनकी भक्ति हुई। तो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है कि गुरु के आशीर्वाद से भगवान में भक्ति हुई, लेकिन शिष्य पहले ही ललायित है, मांगा है कि जब हम जन्म ले वहां तो हमारी पुत्री, हमारी इस तरह परमा प्रीति होनी चाहिए जिससे हम ऐश्वर्य भाव की दुर्गति से बच जाए। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं कि भक्ति में, विशुद्ध मधुर भक्ति में ऐश्वर्य का उदय होना ये उनके लिए दुर्गति थी, तो उस दुर्गति से हम पार हो जाए। ये अर्थ सुन करके संसार के लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ये दुर्गति है। भगवान को हम ईश्वर मानते हैं तो भाव हृदय का संकुचित हो जाता है, वो विकसित नहीं होता है। और जो हृदय का खुला भाव, जो ढलढल प्यार आता है पुत्र में, वो भगवान में थोड़े आ जाएगा। तो भगवान की मंगला आरती में भी आदमी खड़ा हो और बच्चा अपना जन्मा हुआ यदि अपने कंधे पर हो, तो फिर भी जो प्यार अपने बच्चे में होता है वो आंखें भर रहती है मूर्ति पर, वो होती नहीं। तो भगवान चाहते बल्कि तुम दूसरे को वैसे देखो, हमको कंधा पर रखो, गोद में रखो, वो ठीक है, भगवान ये चाहते हैं। तो वे भी सुख लिए नंद जसोदा के भाव का, वात्सल्य प्रेम का, और सुख दिए। दाता तो है ही, सबसे बड़े दानी है, महाबदानी, सुख लिए सुख दिए। ऐसा नहीं है कि ये सुख दे दिए उनको ज्यादा अब ऋणी नहीं रहेंगे, कुछ भी दें ऋणी ही रह जाएंगे, क्योंकि देंगे क्या। ब्रह्मा जी कहते हैं इनके पास अपने अलावा और है क्या, तो अपने को तो पुतने को भी दे दिए, तो उनको क्या देंगे। मतलब परस्पर बसी कारिता सुचिता, दोनों दोनों के ऋणी रहे हमेशा। नंद जसोदा सदा प्रेम से सेवा करते रहते हैं और भगवान सेवा लेते रहते हैं। कृष्ण अपनी बाल लीला से उनको सुख देते हैं और वे कृष्ण को सुख देते हैं, खिला कर पिला कर सुला कर डांट डपट करके बंधन करके, जैसे भी कृष्ण को सुख देते हैं। तो माँ जसोदा के भाव की पराकाष्ठा, वात्सल्य प्रेम की सीमा अगले अध्याय में दिखाई जाएगी, और भगवान के भी प्रेम वशित्व को, कि प्रेम के वश में है, उसकी भी सीमा दिखाई जाएगी कि किस तरह जसोदा के वे अधीन हैं और किस तरह जसोदा उनसे प्रेम कर रही है। दाम बंधन उखल बंधन लीला, तो इसको हम दोपहर के बाद प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। हाँ पूर्ण किया, पहले तो उनकी लालसा थी और पूर्ण यह किया कि उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया। ऐसे थे ये, पहले से ही परम भक्त थे, ये चाहते थे कि भगवान हमारा पुत्र बने, पहले से ही चाहते थे। लेकिन अब सुखदेव गोस्वामी क्या पुण्य वर्णन करे, कोई किसी पुण्य का फल थोड़े है कि पुण्य वर्णन कर। ये तो भक्ति का फल है, इसलिए उनकी भक्ति का, उनकी लालसा का वर्णन किए और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद का। नहीं, वो पहले से ही भक्ति थी, वही बढ़ गई, और पहले से ही थी। है आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, वास्तव में पूर्ण क्या किए थे, लेकिन शायद ये वर्णन से परे है, अतः सुखदेव गोस्वामी कुछ कह नहीं सके। ये पूर्ण ये है, गुरु की बात मानना, गुरु की आज्ञा मानना और भगवान में लालसा रखना, यही पूर्ण है। जब प्रश्न है आपने कहा कि भगवान से हमारा नित्य संबंध है, क्या वह संबंध भक्ति करने से अपने आप प्रकट होता है या अपने मन से ही संबंध स्थापित करना चाहिए? नहीं, सुनने से प्रकट होता है। श्रवण कीर्तन जले कर ऐसे चंद, जब हम इस तरह भगवान की समस्त लीलाओं को सुनते हैं तो जो हमारा नित्य भाव है वो भाव मुख्य रूप से प्रकट होगा। लेकिन सुनना चाहिए एक बार ठीक से, तब अपने आप पता चलेगा कि हमारा भाव क्या है। वो सुनने से प्रकट होता है, श्रवण कीर्तन में नौ विधा भक्ति करने से प्रकट होता है, और सबसे ज्यादा सुनने से भाव नित्य। प्रश्न आया है कि वसुदेव जी ने दूसरे के बच्चे को लेकर के उसको सक्रिफाइस करके अपने बच्चे को बचाना चाहा, मतलब कंस को देख करके, क्या यह ठीक माना जाएगा कि दूसरे के बच्चे को लेकर के कंस के हाथ में देना अपने बच्चे को बचाने के लिए? ये तो सारी व्याख्या हो चुकी है। वो इसलिए उस बच्ची को कंस के हाथ में दी है क्योंकि भगवान ने कहा था कि वो मेरी योग माया है, उसका कुछ नहीं होगा। वसुदेव जी जानते थे, भगवान ने कहा था कि जाओ गोकुल में और वहां से लाओ, तो ये तो सुरक्षित हो ही गए, और वो तो महामाया है ही, योग माया है, उसका कुछ होगा नहीं। तो इसलिए ये इस एक्सचेंज में कोई निर्दयता का प्रश्न नहीं। और वैसे किसी सामान्य बच्चे को मारकर भगवान को बचाया जाए तो कोई खास अपराध नहीं, अमर है आत्मा, अमर है, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा। लेकिन भगवान को मार दिया जाएगा तो भगवान कहाँ बच अरे भगवान को तो मारा नहीं जा सकता वो वसुदेव जी जानते थे इस बात को, इसीलिए वो एक्सचेंज किए, नहीं तो नहीं किया होते। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एकदा गृहदासीसु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। शुक उवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एकदा एक समय गृहदासिसु गृहदासियां यशोदा यशोदा नंद गेहिनी नंद महाराज के घर की स्वामिनी कर्मांतर नियुक्तासु दधिमंथन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नियुक्त किए जाने पर निर्ममंथा निर्मंथन करने लगी स्वयं स्वयं दधि दही। तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि कल बहुत लोगों को अवसर मिल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है अवसर मिलेगा, इसीलिए मैं आज से ही अवसर देना। गोपियों के बारंबार उलाहना आते रहते थे प्रतिदिन, तो माँ ने एक बार मन में बहुत चिंता किया यशोदा ने, कि लगता है कि हमारे घर का नवनीत माखन अच्छा नहीं होता है, इसी कारण से मेरा पुत्र परगृह में जाकर चोरी करने लगा, खाने लगा। बारंबार यह अभियोग आवे कि उसका पुत्र आज इस घर में पकड़ा गया, यहाँ उपद्रव किया, यहाँ उपद्रव किया, तो माँ तो जान गई कि वो जाता है रोज और अपने घर में माखन अपार है, दही है, दूध है, लगता है कि दूसरे के घर का अच्छा होता है, इसी कारण से जाता है। और उधर भगवान कृष्ण ने भी ये सोचा कि मैं सब सुख पाया लेकिन माँ मुझे ताड़ना नहीं दे रही है, भर्सना नहीं कर रही है, भगवान तरसने लगे कि कब मुझे डांटा जाएगा, कब ताड़ना दिया जाएगा और मुझे बंधन में डाला जाएगा। एक भक्त टीकाकार कहते हैं कि भगवान अनादि काल से भगवान हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र आदि को कंट्रोल करते हैं, नियमन करते हैं, तो भगवान के मन में ये लालसा होती रहती थी कि मैं भी किसी के अधीन जरा बन करके देख, सबको तो अपने अधीन रखा हूँ लेकिन क्या कोई ऐसा है जो मुझे अपने अधीन रखे और मुझे बांधे, उसके बंधन में मैं रहूं। तो यह सुख पाना चाहते थे भगवान। तो एक बार की बात है, एकदा, दा का अर्थ होता है समय, एक समय, एकदा नंदगेहिनी जशोदा, नंद महाराज के घर की स्वामिनी यशोदा अपने घर के दासियों को कर्मांतर नियुक्ता सु अन्य कर्मों में लगा दी। बात यह थी कि उस समय इंद्र याग महोत्सव आने वाला था दीपावली के तुरंत बाद, और यह जो घटना घटी है उखल बंधन की, यह दीप मालिका के दिन की है, जिस दिन दिवाली पड़ती है, दीपक दिखाए जाते हैं। तो घर की दासियों को जशोदा ने काम धंधा में लगा दिया कि इंद्र को अर्पण करना है बहुत बड़ा बड़ा प्रसाद, इसलिए तुम जाओ वो बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, कोई अनाज कूटना था, पीसना था, मिठाइयाँ बनानी थी, तो बहुत बड़ा उत्सव था, होता था प्रत्येक वर्ष। तो माँ ने दासियों को लगा दिया कि तुम लोग वो सब उत्सव का कार्य करो, और वो स्वयं दधि मथने लगी। उसने सोचा कि मैं अब आज से इस प्रकार का सुंदर स्वादिष्ट नवनीत निकालूंगी कि मेरा पुत्र किसी के घर में नहीं जाएगा, अपने घर में माखन खाकर संतुष्ट हो जाए, इसलिए वो दही मथने लगी। एकदा गृहदासीसु जशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। स्वयं शब्द बता रहा है कि यशोदा कभी दही नहीं मथी थी, उसके गृह में सहस्रों दासियां थी, तो वही ये सब किया करती थी। लेकिन दीपावली के दिन जब श्री कृष्ण 3 वर्ष के थे, कुछ दिन ज्यादा, वही जन्माष्टमी से और जितना दिन अधिक दीपावली तक जोड़ लीजिए, तो उसने ये योजना बनाया कि अपने हाथ से माखन निकालूं, तो स्वयं दधि मथने लगी। पद्मगंधा गाय के दूध को जमाई थी, दही बनाई थी और दही से माखन निकाल रही थी। आज के युग में डायरेक्ट दही से माखन निकालना बड़ा दुर्लभ होता जा रहा है, कच्चा दूध से लोग निकाल लेते हैं, उसमें वो स्वाद नहीं होता। दही से निकला हुआ घी और दूध से निकले हुए घी में बहुत अंतर होता। तो जशोदा पहले दही जमाई, इसके बाद मथ रही थी। मथते समय जशोदा की क्या स्थिति थी, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जानी यानी यान जानी गीतानी तदबाल चरितानी च, जो जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के गीत ब्रज में प्रसिद्ध हो गए थे, पूतना बध आदि से लेकर के और अब तक के बहुत से गीत थे। ध्यान रखना चाहिए कि अप्राकृत जगत में कविता बनानी नहीं पड़ती है, वहाँ के परिकर जो कुछ बोलते हैं वही गीत जैसा बोलते हैं, कथा गानम, गमनम अपि नाट्यम, और वे चलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे नृत्य करते हुए चलते हैं, नृत्य कर रहे हैं। इसका कारण है कि चिन्मय शरीर रहता है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है, तो वो चलते हैं कहीं भी तो नृत्य करते हुए चलते हैं। कोई चीज बोलते हैं तो कविता में बोलते हैं, सीधे काव्य में। तो कृष्ण के बाल चरित के विषय में बहुत से गीत प्रसिद्ध थे, गोपियां गाती थी, बच्चे गाते थे, गोप लोग गाते रहते थे। तो यानी जानी है गीतानि इह अर्थात ब्रजे, ब्रज में जो जो गीत प्रसिद्ध थे, दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायता। तो दही मथते समय माँ जसोदा कृष्ण की उन लीलाओं की याद किया करती थी, हमेशा उसके मन में वो लीलाएं याद आती थी, और जो जो लीलाएं याद आती थी उन्हीं को गाया करती थी, गा रही थी दही मथते समय। माँ जसोदा को बड़ा सुख मिल रहा था।